श्रृंगारितर भाव व्यंजना। श्रृंगार के अतिरिक्त बिहारी में अन्य प्रकार की भावाभिव्यक्तियां भी मिलती हैं। इनके तीन रूप हैं, व्यंग्योक्तियां, भक्तिपरक रचनाएं और प्रकृति वर्णन। नीतिपरक रचनाओं को इसके अंतर्गत नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वे मूलतः भाव से ही नहीं बल्कि नीति मतात्मकता से अनुप्राणित हैं। व्यंग्योक्तियों के संबंध में भी यह प्रश्न उठाया जा सकता है, पर इनका संबंध कोरी नीतिमत्ता से नहीं है और ना कोरा बुद्धि विलास ही इन्हें अनुप्रेरित करता है। एक विशेष भावात्मक स्थिति में जब वाणी वक्र हो उठती है तो व्यंग्योक्तियां अपने आप अभिव्यक्ति पा जाती हैं, इसलिए यह मुख्यतः भावानुप्रेरित ही होती है। ये कभी क्षोभजन्य मन की उपज होती है तो कभी शांति मन की। क्षोभजन्य मन से प्रादुर्भूत व्यंग्योक्तियां प्रायः आक्रमणात्मक होने के कारण कटुक्तियां बन जाती है, और कटुक्तियों को न तो जीवन में स्वस्थ माना जाता है और न साहित्य में। शांत मन से निकली हुई व्यंग्योक्तियों में भी जो मीठी चुटकी रहती है उसकी मार अधिक सौजन्यपूर्ण किंतु तीखी होती है। इनके पीछे भी अवचेतन मन में छिपा हुआ कोई न कोई विरोध होता है, पर यदि वह विरोध व्यक्ति विशेष के प्रति प्रदर्शित किया जा रहा है तो व्यंग्य की गुरुता समाप्त हो जाएगी। इसके विषय की व्याप्ति जितनी अधिक होगी व्यंग्य भी उतना ही मार्मिक और प्रभावोत्पन्न होगा। कवि जिस समाज और वातावरण में रहता है अपने व्यंग्य का विषय भी उन्हीं के बीच से चुनता है। जिस श्रृंगारिक वातावरण में बिहारी ने अपनी काव्य प्रतिभा का विकास किया उसी में से उन्होंने हास्य व्यंग्य की सामग्री भी चुनी। यद्यपि संख्या में व्यंग्य परक दोहे बहुत कम हैं, फिर भी उनमें पैनेपन की कमी नहीं है। जिन पौराणिकों, वैद्यों, ज्योतिषियों और सहृदयों पर व्यंग्य किया है कि वे सामंतीय सामाजिक व्यवस्था की असंगतियां हैं, वे व्यक्ति न होकर टाइप हैं जो तात्कालीन समाज के मर्म का बहुत ही सटीक उद्घाटन करते हैं। एक पर उपदेश कुशल की करतूत देखिए। परतीय दोस्त पुराण सुनी, लखी मुल की सुखदानी, कसी करी राखी मिश्रहूं, मुँह आई मुस्कानी। किसी कथा प्रेमी समाज में पौराणिक जी कथा सुना रहे थे, एक ऐसे प्रसंग की व्याख्या कर रहे थे जिसमें पर स्त्री गमन को दोष माना गया है। श्रोताओं में उनकी परकिया भी बैठी हुई थी, उनकी व्याख्या सुनकर वह हंस पड़ी। मिश्र जी ने यह हंसी ना देखी हो ऐसी बात नहीं थी, उन्हें भी हंसी आ गई, पर चतुर पौराणिक ने बलपूर्वक अपनी हंसी रोक ली जिससे उनका रहस्य उद्घाटन न हो जाए। यह थी उस समय के पौराणिकों की दशा। शास्त्र के सारे विधि निषेध केवल दूसरों के लिए थे, वे उनसे परे स्वतंत्र और उश्रृंखल थे। अब एक वैद्य की पहचान कीजिए। बहु धन लय अहसान कै पारो देत सराही, वैद वधु हसी भेद सो रही नाह मुह चाही। वैद्यराज जी ने काफी धन लिया और अपने भस्म की तारीफ करते हुए बड़े निहोरे से दवा दी। बेचारे नपुंसक रोगी को क्या पता कि वैद्य जी भी इसी मर्ज के मरीज हैं। वैद्यराज जी की वधु भी वहीं बैठी हुई थी, वह रहस्यपूर्ण ढंग से हंसी और अपने पति देव का मुंह देखकर रह गई। वैद्यों के शोषण और व्यर्थ दवा पर कितना गहरा व्यंग है। एक ज्योतिषी जी की प्रसन्नता की वानगी भी देखने लायक है। चित्त पित्त मारक जोग गनी, भयो भय सुत सोग, फिरी हुलस्यो जिए जोयसी, समुझे जारज लोग। ज्योतिषी जी को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। जब उन्होंने उसकी कुंडली बना ली तो देखा कि ग्रह संस्था में पितृमारक योग पड़ा है। इससे उनको बहुत शोक हुआ, पर जन्म में जारज योग समझकर वे मन ही मन परम प्रसन्न हुए थे। जान बची लाखों पाए। किसी रसिक ने एक सुंदरी के बहनापे का नाता जोड़ लिया है, पर इस नाते के मूल रहस्य को समझती हुई उसकी सखी कहती है, बहकी नहीं बहिनापनय जब तप वीर विनाश, बचे न बड़ी सभी लहू चील घोसुआ मांस। इस बहनापे की चाल तुम नहीं समझती, इसके चक्कर में न फंसना, इससे कभी न कभी बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम अपनी तरह ही सबको सरल जानती हो, चील के घोंसले में बहुत उपाय करने पर भी मांस नहीं बचता। उस मध्यकालीन युग पर यह व्यंग जितना सत्य है उससे कहीं अधिक आज के युग पर। न तो उस समय उस संबंध की पवित्रता का निर्वाह हो पाता और न वह आज होता दिख पड़ता है। आज की पाश्चात्य संस्कृति में बहिन या बहिनजी का अर्थ व्याख्या की अपेक्षा नहीं रखता। इस तरह की सूक्ष्म व्यंग्योक्तियों का रतिकालीन कविता में सर्वत्र अभाव मिलेगा। व्यंग्य विनोद की सर्जना बहुत बड़ी प्रतिभा की मांग करती है। इस प्रतिभा के अभाव में व्यंग्य विनोद के नाम पर भड़ौआ की रचना होने लगती है, जिसके नमूने आधुनिक हास्य रस की ढेर रचनाओं में प्रायः देखने को मिलते रहते हैं। बिहारी ने अपनी सत्सई में जहां एक और परकिया प्रेम के संबंध में काफी दोहे लिखे, वहां उसका मजाक उड़ाने में भी नहीं चुके। इन व्यंग्योक्तियों से यह बात काफी स्पष्ट हो जाती है। इस असंगति का मुख्य कारण यह है कि सामंतीय वर्ग में प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं था। वह प्रेम के नाम पर मनोविनोद किया करता था। प्राचीन नागरिकों की तरह निश्चिंत विलास भी ये नहीं कर सकते थे। यह युग न उस वैभव की ऊंचाइयों को स्पर्श कर सकता है और न रसिकता की गहराइयों में उतर सकता है। नैतिकता के भय से वह अपने को सर्वथा मुक्त नहीं कर पाया था। इस द्विधा की स्थिति में नैतिकता के लिए कोई खास स्थान नहीं रह पाता, वह और भी विकृत हो जाता है। इस विकृत नैतिकता पर बिहारी ने बहुत चुपते हुए प्रहार किए हैं। भक्ति भावना। भक्ति एक रस है, अब यह निर्विवाद हो गया है। यह सच हो सकता है कि साधारणीकरण की दृष्टि से यह अपेक्षाकृत सीमित हो। रस और साधारणीकरण पर विचार करते समय हमारे देश के आचार्यों की दृष्टि सर्वदा पाठक या सहृदय पर रही है, किंतु कर्ता या कवि की काव्य प्रक्रिया को छोड़ देने का परिणाम यह हुआ कि काव्य नैतिकता की धरातल पर आ खड़ा हुआ। इससे कवि के उचित मूल्यांकन में बाधा भी आई। वास्तव में कवि का सच्चा विश्लेषण दोनों सिद्धांतों के आधार पर ही किया जा सकता है। भक्ति भावना को ही लीजिए। भक्त कवियों की रचनाओं को देखने से ज्ञात होता है कि भक्ति उनके जीवन का अनिवार्य अंग हो गई थी, इसलिए उनकी कृतियां भी सहज ही भावोद्रेक्षम बन सकी। रीति कवियों की भक्ति भावना या तो परंपरा का पालन करती है या जीवनगत नैराश्य और क्षोभ का आश्रय स्थल प्रस्तुत करती है। बिहारी की भक्तिपरक रचनाओं को पहली कोटी में रखना चाहिए, क्योंकि वे अपने काल के अन्य बहुत से कवियों की भांति द्विधात्मक स्थिति में नहीं पड़े और न पेट की चपेट में उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। परंपरा पालन के कारण बिहारी की भक्तिपरक रचनाओं में न भागवत उन्मेष मिलता है और न मौलिक उद्भावना, पर यह कहना कि श्रृंगारिक भावना के आवेश में उन्होंने मुक्ति का निषेध किया है अत्यंत आश्चर्यजनक है। बिहारी और उनका साहित्य में डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और श्री परमानंद शास्त्री ने संयुक्त रूप से उपयुक्त घोषणा की है। अपने मत की पुष्टि में लेखक द्वय ने बिहारी के निम्नलिखित दो दोहे उद्धृत किए हैं। जोना जुगत पिय मिलन की धूरी मुकति मुहदीन जौ लहिये संग सजंत धरक नरकहू की ना चमक तमक हासी ससक मसक झपट लपटानी ये जिही रति सो रति मुकति और मुकति अति हानि। इन दोहों के आधार पर अद्भुत निष्कर्ष निकलने के पहले यदि रत्नाकर जी की टीका देख ली गई होती तो इस भ्रांति के लिए अवकाश न मिलता। बिहारी रत्नाकर में प्रथम दोहे की टीका यूं की गई है। उद्धव जी से गोपियों का वचन, यदि प्रियतम के मिलन की युक्ति नहीं है तो हमने ऐसी मुक्ति के मुंह में धूल झोंकी, और यदि प्रियतम संग में प्राप्त हो तो नरक की भी धड़क नहीं है। क्या इसमें श्रृंगारिक भावनाओं के आवेश में मुक्ति का निषेध किया गया है और आप इस दोहे को मौलिक प्रसंग देना चाहते हैं? इससे किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। इस पर इस दोहे में प्रेम के जिस उज्जवल और उदात्त पक्ष को विचित्र किया गया है उसे भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तो क्रांतिक प्रेम में राग की जो सांद्रता है वह इसके मानवीय मूल्य को काफी बढ़ा देती है। इसमें मुक्ति का निषेध देखना हो तो वैसा ही है जैसा सूर के हरि हौ सब पतितन को राऊ में सूर का चारित्रिक दोष देखना। इसी प्रकार दूसरे दोहे में मुक्ति का निषेध नहीं माना जा सकता। काव्य सत्य और वस्तु सत्य का भेद न करने पर भी इस तरह के अद्भुत वक्तव्य दिख पड़ते हैं। बिहारी स्वयं कहते हैं, मोहू दीजय मोस जो अनेक पतितन दियो जौ बांधे ही तोसु तौ बांधव अपने गुणन। वास्तविकता यह है कि श्रृंगारिक कविताओं की भांति भक्तिपरक रचनाओं में भी बिहारी ने परंपरा का पालन किया है। भक्तों के मोटे सिद्धांतों को ही इन्होंने अपने दोहे में व्यक्त करना उचित समझा। सामान्य भक्तों की भांति इनका दृष्टिकोण भी असंप्रदायिक था। बाह्याचार के संबंध में उन्होंने जो कुछ उद्गार व्यक्त किए हैं वे भक्त कवियों की भावनाओं के मेल में हैं। आत्मनिवेदन संबंधी दोहों के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। असांप्रदायिक दृष्टिकोण। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भक्त कवियों ने भक्ति की जो मंदाकिनी बहाई उसके प्रखर स्रोत में मत मतांतरों के क्षुद्र तृण ठहर न सके। तुलसी की सर्वधर्म समन्वय की धारणा तथा सूर की स्वच्छ असांप्रदायिक दृष्टि ने इस दिशा में जो स्तुति कार्य किया उसका इतना गंभीर और व्यापक प्रभाव पड़ा कि सांप्रदायिक विद्वेष की खाई सर्वदा के लिए पट गई। विभिन्न संप्रदायों में दीक्षित होने पर भी रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवियों ने किसी विशेष मत के प्रति आग्रह नहीं व्यक्त किया, प्रत्युत अपने पूर्ववर्ती भक्त कवियों द्वारा निर्दिष्ट सामान्य भक्ति मार्ग का ही अनुसरण किया। बिहारी ने अपने समय के सभी कवियों का प्रतिनिधित्व करते हुए लिखा है, अपने अपने मत लगाए बादी मचावत सोर, ज्यों त्यों सबही सेई बव एकै नंद किशोर। इसी दृष्टिकोण के कारण राम कृष्ण रघुराज मुरारी सभी समानार्थी हो गए थे। इसको सांप्रदायिक ढंग से इन कवियों ने नहीं देखा। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार राम और कृष्ण में ये लोग कोई भेद नहीं समझते थे, भगवान की एक सामान्य भावना लेकर ही अपनी उक्तियां गढ़ा करते थे। यही कारण है कि राम की लीला कृष्ण के नाम पर और कृष्ण की लीला राम के नाम पर कह देते थे। सूर और तुलसी ने भी ऐसा ही किया है। बाह्याचार। भक्त कवियों और संतों ने प्रायः बाह्य आडंबर को व्यर्थ बतलाते हुए आंतरिक प्रतीति में अपनी आस्था प्रकट की है। रीति कवियों ने इस विषय में स्फुट ढंग से जो कुछ लिखा है वह उन्हीं भक्तों और संतों की परंपरा में पड़ता है। बिहारी का एक दोहा, जप माला छापा तिलक सरै ना एकौ काम, मन काचै नाचै वृथा साचै राचै राम। पद्माकर की पंक्तियां, काहे को बघंबर को ओढ़ी कड़ो आडंबर, काहे को दिगंबर हुए दूब खाई रही है, कहे पद्माकर त्यों काय कह क्लेश हित, सीकर सभीत सित बात ताप सही है। काहे को जपोगे जप, काहे को तपोगे तप, काहे को प्रपंच पंच पावक में दही है, रैन दिन आठो जाम, राम 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 राम, सीता राम सीता राम सीता राम कही है। सख्य और उपालंब। सख्य भाव की उपासना में वाणी का वक्र हो जाना स्वाभाविक होता है, क्योंकि सखा भाव के कारण उपासक और उपास्य बहुत कुछ एक धरातल पर आ खड़े होते हैं। इसके फलस्वरूप भक्त उपालंब देने के लिए भी रास्ता खोज निकालता है। सूर के ढंग में बिहारी ने इस तरह की उक्तियां कही हैं। पहला, कौन भांति रही है बिरद अब देख भी मुरारी, बीधे मोसो आनी कह गिधे गिध ही तारी। दूसरा, मोही तुम्हें बाढ़ी बहस को जीते जदुराज, अपने अपने निबीरद की दुहुन निबाहन लाज। तीसरा, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तज्यो मनुतारन बिरद बारक बारन तारी। चौथा, बंधु भय का दीन के को तारे और रघुराय, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाए। आत्मनिवेदन। यद्यपि भक्तों की देखा देखी रीति कवियों ने भी भगवान के प्रति आत्मनिवेदन किया है, पर इस निवेदन में वह तन्मयता और विभोरता नहीं है। वृत्तिकालीन कवि थे, भक्त कवियों की भांति उनका पूर्ण जीवन भगवान को कभी समर्पित नहीं हुआ, इसलिए इनकी कविताओं में वह विवलता ढूंढना इनके साथ अन्याय करना है। कभी कभी इनकी रचनाओं में जो भावपरक विवलता दिखाई पड़ती है वह एक विशेष मानसिक स्थिति की उपलब्धि है। बिहारी की श्रृंगार परक रचनाओं की भांति भक्ति परक रचनाओं में भी आवेगमयता कहीं नहीं मिलेगी, पर इसमें भी यत्र तत्र संयम और संवेदन दिखाई देगा। एक उदाहरण लीजिए, तजी तीरथ हरि राधिका तंदुति करी अनुराग, जिही व्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। इसके साथ ही मतिराम का भी एक दोहा देखिए, राधा मोहन लाल को जिन्हें न भावत नेह, परियो मुठी हजार दस दिन की आंखिन खेह। आवेग और संवेदना की चर्चा पीछे कहीं उठाई जा चुकी है, अतः यहाँ उसका पिष्ट पेषण हमें अभिप्रेत नहीं है। मतिराम के दोहे में कवि की आवेगमयता पूरी ऊंचाई पर पहुंची हुई है, पर बिहारी के दोहे की संवेदनशीलता सहृदयों पर अधिक गहरा और स्थायी प्रभाव डालती है। मतिराम के दोहे में बात आवेगात्मक ढंग से कह दी गई है, पर बिहारी के दोहे का कथ्य पाठकों से कुछ अधिक मांग करता है। यूं इस प्रकार के दोहे बहुत कम हैं। विषयों का निषेध। भक्त संतों के वैराग्य, संतोष, नारी निंदा आदि के बिना इस परंपरा का पूरा निर्वाह नहीं किया जा सकता था। अन्य रीति कवियों की अपेक्षा बिहारी ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। इन दोहों में भावों की प्रगाढ़ता तो नहीं है, पर वक्रोक्ति जरूर है। पहला, जम करी मुह तर हरि, पर्यो हर धरहि चित लाओ, विषय त्रिषा परिहरि, अजौ नरहरि के गुण गाओ। दूसरा, दीर्घ सांस न लेही दुख, सुख साई नहीं भूली, दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूली। तीसरा, या भव पारावार को उलंघी पार को जाए, तिय छवि छाया ग्राहनी, गहे बीच ही आए। प्रकृति चित्रण। प्रकृति के जिन संश्लिष्ट चित्रों की खोज सहृदय करते दिख पड़ते हैं, उन्हें बिहारी में देखा जा सकता है। पूरे ऋतिकाल में इस तरह के भावपूर्ण प्रकृति चित्र बहुत कम मिलेंगे। इस दृष्टि से भी बिहारी बेजोड़ हैं। पहला, छकी रसाल सौरभ सनय, मधुर माधवी गंध, ठौर ठौर झूमत झपत, भौर झौर मधुवंध। दूसरा, कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोबन सो क्यों, दीर्घ दाग निदाग। तीसरा, बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, निरखी दुपहरी जेठ की, छाहो चाहती छा। पहले उदाहरण में बसंत श्री का इतनी कम रेखाओं में जितना व्यंजक चित्र खींचा गया है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है। गंधपूर्ण बासंती वातावरण अपनी समस्त समृद्धि में चित्रमय हो उठा है। दूसरे उदाहरण में चमत्कार की प्रधानता हो गई है। तीसरे उदाहरण में एक पंक्ति के सहारे निदाग की भीषणता को पूर्णता व्यक्त करने में कवि को पूरी सफलता मिली है। समाप्त।